नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कुल्लू की डॉक्टर श्रुति मोरे को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रदेश में 1,24,000 से अधिक अवैध कब्जाधारियों की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी सरकार। विधानसभा में आपदा के मुद्दे पर भारी हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में 3 विधेयक पारित, मुख्य सचिव होंगे रेरा चयन समिति के अध्यक्ष। और प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ भाजपा कल धर्मशाला में करेगी प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसी समाज को सही मायने में तभी विकसित कहा जा सकता है जब दिव्यांगजनों के साथ समान व्यवहार किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके साथ दया नहीं बल्कि सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
समाज को सही अर्थों में विकसित माना जा सकता है जिसमें दिव्यांगजन की बराबर की भागीदारी हो। दिव्यांगजन संवेदनशीलता और कोरोना के पात्र नहीं है, ये बराबरी के हिस्सेदार है।
इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कुल्लू की डॉक्टर श्रुति मोरे को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। डॉक्टर श्रुति मोरे व्यावसायिक चिकित्सक और सामाजिक नव प्रवर्तक हैं जो भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के पुनर्वास को नया जीवन दे रही हैं। उन्होंने थेरेपी ऑन व्हील्स के तहत कुल्लू और चंबा में 450 से अधिक दिव्यांग बच्चों और 1600 परिवारों को प्रारंभिक हस्तक्षेप और देखभाल प्रशिक्षण प्रदान किया है। राज्य सरकार 1,24,870 अवैध कब्जाधारी परिवारों की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी ताकि इन परिवारों को बेघर होने से बचाया जा सके। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधायक जीतराम कटवाल द्वारा पूछे गए सवाल के उत्तर में दखल के दौरान ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नामी वकीलों को खड़ा करेगी ताकि इन कब्जाधारी परिवारों के खिलाफ प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में इन्हें राहत दिलाई जा सके। इससे पहले मूल प्रश्न के उत्तर में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने 2002-03 में एक ऐसी नीति लाई जिसमें अवैध कब्जाधारियों के कब्जे नियमित करने की बात कही गई। इस नीति के तहत प्रदेश में 1,60,000 से अधिक लोगों ने रातों रात आवेदन कर दिया और ये सभी अवैध कब्जे सामने आए हैं। राजस्व मंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा बनाए गए कानून 163A को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है, इसलिए इस समस्या के लिए पूर्व भाजपा सरकार जिम्मेदार है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रतिपूरक सवाल में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा इस नीति को लाने का उद्देश्य दशकों से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे लोगों को उनकी जमीन का कब्जा दिलाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने सही ढंग से इस मामले को अदालत के समक्ष नहीं रखा, जिस कारण 1,24,000 से अधिक परिवारों के बेघर होने की नौबत आ गई है। विधायक डीएस ठाकुर के सवाल के जवाब में दखल देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में रियायती पास पर यात्रा करने वाले 28 श्रेणियों के लोगों के हिम बस पास बनेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने ये प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इसे पहली जनवरी 2026 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिम बस कार्ड को हिम परिवार से जोड़ा है ताकि इस सुविधा का दुरुपयोग रोका जा सके। विधानसभा में आपदा के मुद्दे पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी दल भाजपा ने आज भारी हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। चर्चा का उत्तर देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार ने बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटना में लापता हुए लोगों को मृत घोषित करने का मामला रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के समक्ष उठाया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में 2,650 करोड़ रुपए की योजना शुरू की है। इसके तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार से अभी इस साल के नुकसान के एवज में विशेष मदद नहीं मिली है। इस बीच विपक्षी सदस्य अपनी सीटों से उठे और आपदा के काम को लेकर संतोषजनक जवाब न देने की बात कहने लगे और नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आज सदन में विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बीच तीन महत्वपूर्ण विधेयक ध्वनिमत से पारित किए गए। सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी में हिमाचल प्रदेश भू संपदा विनियमन और विकास संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक और दुकान व वाणिज्यिक संस्थान स्थापना संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिए गए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
हिमाचल प्रदेश में रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए गठित की जाने वाली समिति की अध्यक्षता अब मुख्य सचिव करेंगे। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह राज्य के मुख्य सचिव को चयन समिति का अध्यक्ष बनाने संबंधी हिमाचल प्रदेश भू संपदा विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2025 को आज विधानसभा में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ध्वनिमत से पारित किया गया। विधेयक पारित होने से पहले भाजपा के विपक्षी सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए थे। विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही ये प्रदेश में लागू होगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विधायक रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्बाल ने संशोधन को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि रेरा केंद्रीय कानून है और राज्य इस तरह का संशोधन करने का अधिकार नहीं रखता है। चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रेरा का अध्यक्ष सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समवर्ती सूची के विषयों से जुड़े नियमों में संशोधन करने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2025 को भी विपक्ष के विरोध के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया। विपक्ष ने इसे कर्मचारी विरोधी करार देते हुए वापस लेने की मांग की। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नए प्रावधानों से भर्तियों और नियमितीकरण में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि कानून पिछले वर्ष बना था और प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया गया है। विधेयक पर चर्चा में भाजपा के रणधीर शर्मा और त्रिलोक जम्बाल ने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के आपत्ति दर्ज करने के अधिकार को सीमित करना चाहती है। सदन ने दुकान और वाणिज्यिक संस्थान स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को भी ध्वनिमत से पारित किया। इसके तहत अब प्रदेश में कामगार एक तिमाही में 144 घंटे तक ओवरटाइम कर सकेंगे और इस अवधि में उन्हें दोगुना वेतन मिलेगा। पहले ये सीमा 50 घंटे थी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह संशोधन केंद्र के निर्देशों के अनुरूप किया गया है ताकि कारोबार में सुगमता बढ़ाई जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश की 85% दुकानें और वाणिज्यिक संस्थान ऐसे हैं जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, इसलिए इन सभी को इस संशोधन का लाभ मिलेगा। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, धर्मशाला।
भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर उनकी जन विरोधी फैसलों के खिलाफ कल धर्मशाला में प्रदर्शन करेगी। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने बताया कि प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, पार्टी अध्यक्ष राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नाकामियों को भाजपा जनता के बीच ले जाएगी और ये प्रदर्शन कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का प्रतीक बनेगा। संजीव कटवाल ने बताया कि प्रदर्शन में प्रदेश भर से हजारों पार्टी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए कुल्लू की डॉक्टर श्रुति मोरे को राष्ट्रीय पुरस्कार से किया सम्मानित। प्रदेश में 1,24,000 से अधिक अवैध कब्जाधारियों की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी सरकार। विधानसभा में आपदा के मुद्दे पर भारी हंगामा, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सदन में 3 विधेयक पारित, मुख्य सचिव होंगे रेरा चयन समिति के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के जन विरोधी फैसलों के खिलाफ भाजपा कल धर्मशाला में करेगी प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।